फिर इसी तरह से आप देखिए कि दुआए अजान में मुख्तलिफ अल्फाज के इजाफों की हकीकत क्या है, यानी कुछ लोग अलग कर लेते हैं, तो ज़रा इसको भी सुनिएगा। मसनून दुआए अजान में बास लोगों ने चंद अल्फाज बढ़ा रखे हैं और वो अल्फाज आजकल की मुरवजा कुतब नमाज में भी मौजूद हैं। दुआए मसनून के लफ्ज़ वल फदीलता के बाद व दरजतर रफिया का इजाफा करते हैं, आपने खुद भी सुना होगा, ये भी आवाज़ हमारे कानों तक पड़ती है, और आगे वत्तहू के बाद वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहू यौमल क़ियामा का इजाफा करते हैं, और फिर मसनून दुआ के आखिर में या अरहमर राहिमीन का इजाफा करते हैं, और इसी तरह इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, ये अल्फाज सुनन बहकी की रिवायत के हैं, लेकिन आज के दौर के मुहक्किक तहकीक करने वाले नासिरुद्दीन अल्बानी साहब ने इसे शाज करार दी। शाज हदीस की बड़ी कमज़ोर नरेशन होती है, जैसे उर्दू में नहीं आप कहते शाजो नाजर है, यानी वेरी फ्यू वेरी रेयर, ये मुराद है। मस्कुरा अल्फाज की मजीद तहकीक के लिए अरबाउल गलील और अलकौलुल मकबूल में डिटेल्स मौजूद है, जिसको भी इसकी डिटेल चाहिए हो, अरबिक की ये बुक्स हैं, पुरानी बुक्स हैं, इनको आप जाकर पढ़िए, इंशाल्लाह आपको विद रेफरेंस सब मिलेगा पहली जिल्द में। और अगर अलकौलुल मकबूल में पढ़ना चाहें ये टॉपिक, तो पेज नंबर 302 पे आप पढ़ सकते हैं। अब आप देखिए, जरा सा समझिए, एक जनरल असूल समझ लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ में क्या ये कमी रह गई थी जो बात के लोगों ने अपने इजाफे से पूरी की? एक मुसलमान तो अल्लाह के नबी के किसी फरमाने पाक में कमी बेशी के तस्वुर से भी कांप उठता है कि नाउस बिल, अल्लाह के नबी ने नहीं बताया, अगर अच्छा था तो छुपा लिया हमसे, नहीं छुपा सकते, आप ऐसे नहीं थे। तो लोग जो ये बातें करते हैं ना, असल में ना समझी होती है। और जैसे देखिए, लिखी पढ़ी पढ़ी वहां दे दी। आप इसकी एक दलील सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने रात को बावजू होकर सोने से पहले नमाज के लिए एक दुआ सिखाई। हजरत बरा बिन आजब ने ये दुआ पढ़कर सुनाई। आपने पहले उनको सुनाई, फिर कहा आप पढ़िए। इन्होंने क्या किया कि बी नबी ही का की जगह बी रसूल ही का कह दिया। जो दुआ आपने सिखाई थी ना, वहां बी नबी ही का था, इन्होंने अल्लाह के नबी को सुनाने में भी रसूली का कह दिया, यानी ओनली लफ्ज नबी को रसूल कर दिया। तो आपने फरमाया, मेरे बताए हुए लफ्ज नबी को रसूल से मत बदलो, बल्कि भी नबी जी का ही कहो। जी, दलील लेना चाहें तो लीजिए, सही बुखारी रिवायत 247 और मुस्लिम 2710। अब मुझे बताइए कि अल्लाह के नबी नबी थे? बिल्कुल थे। रसूल थे? रसूल भी थे। दूसरा सवाल है मेरा कि नबी का रुतबा बड़ा है कि रसूल का? रसूल का बड़ा है। हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी जरूरी नहीं कि रसूल हो। तो उन्होंने क्या गलती कर दी, क्या हरज था? और अल्लाह के नबी मौजूद भी हैं इस्लाह करने के लिए, कह देते अच्छा चलो फिर तुम कह रहे हो तो रसूल भी कह ले, अगर आप ये कह देते तो ठीक था। ये है हमारे दीन की लिमिट, इतना ऑथेंटिक। जैसे आप देखिए, किसी गवर्नमेंट के पेपर में, अमेरिका में, यूके में, नॉर्वे में, इवन पाकिस्तान में, आप जबर जेर भी ज्यादा नहीं कर सकते, ए बी सी डी भी नहीं बढ़ा सकते, रिजेक्ट, जाली। यही दीन है। ओरिजिनल एंड कॉपीड का यही फर्क होता है कि ओरिजिनल में कुछ अमेंडमेंट्स नहीं होती, कॉपी में जो मर्जी करिए। आज आप देखिए ऑडियो विजुअल में देखिए क्या कुछ चेंजेस हो सकती हैं, कैसी चीजें हैं। तो पता क्या चला, वजाहत क्या हुई कि मसनून दुआएं और विर्त, विर्त क्या होते हैं, औरात, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, यानी जो विर्त किया जाता है ना मुख्तलिफ अल्फाज का, ये तौकीफी है, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने जहां रोक दिया वहां रुक गए, और इनकी हैसियत इबादत की है, इसमें कमी बेशी जायज नहीं। आप किसी करीने या दलील के बगैर मुतकल्लिम के सीगे को जमा के सीगे से नहीं बदल सकते। मसलन जैसे जहां लफ्ज है ना इन्नी, तो कुछ लोग कहते हैं इन्ना, जैसे ला इलाहा इल्ला अंता सुभाना का इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन है ना सूरत अल-अंबिया में, कोई कह दे ला इलाहा इल्ला अंता सुभाना का इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, जमा में तो ठीक है, लेकिन कुरान की आयत आप बदल नहीं सकते। तो वाहिद है तो वाहिद रखा जाए, करें क्या, जब इज्तमाही दुआ हो रही है तो वहां तो बहुत सारे लोग आमीन कहेंगे, तो क्या कीजिए कि मुतकल्लिम का सीगा बोलें, नीयत से रखी जाए कि यही दुआ सबके हक में भी कर रहा हूं। और एक चीज, और वो क्या है कि मजनून दुआओं और औरात के होते हुए खुद साख्ता अरबी दुआओं, विरदों, वजीफों और दुरूदों का करना ठीक नहीं है, डोंट टेक इट। इल्तिजाम कहते हैं लजीमा से चिपकना, यानी जब सही रिवायतें सही दुआएं इतनी हैं, तो फिर आप मैं क्यों इस पे ना चिपके और अगर इनके कुछ लफ्ज शिर्क और कुफर या बिदत पर मुश्तमिल होंगे फिर तो इनका पढ़ना हराम होगा कतई तौर पर। लेकिन अफसोस के लोग लाइल्मी की वजह से रोजाना सुबह सुबह पाबंदी के साथ खुद साख्ता चीजों की तिलावत करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो दुआओं के मामले में ये नुक्ता याद रखिए, कुरान की दुआ या हदीस की दुआ एज इट इज पढ़िए, और यही पढ़िए खुद साथ अरबी की बहुत सारी दुआएं जो हैं वैसे ही हैं जैसे आपकी मेरी दुआ है। तो क्या आपका मेरा ईमान नहीं है कि अल्लाह के नबी की दुआ को मांगने का भी अजर है, और आपकी दुआएं तो इतनी जामे और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता कि कमी बेशी होगी। फिर इसी तरह साद बिन अबी वक्कास से है रिवायत, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो शख्स मुअज्जिन के शहादतैन के कलिमात सुनकर ये दुआ पढ़े तो इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। दुआ क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू रदीतु बिल्लाहि रब्बं व बि मुहम्मद रसूलं व बिल इस्लामी दीना। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं, और तहकीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने और इस्लाम के दीन होने पर राजी हूँ। कितनी प्यारी दुआएं आप सिखा गए। ये मुस्लिम के अल्फाज थे 386 और इब्ने खुजैमा 220 जिल्द नंबर 1 है। तो ये दुआएं याद कीजिए, थोड़ी भी काफ़ी होंगी। अल्लाह के नबी की ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकले मोहब्बत से अदा कीजिए। बच्चे की बात बार बार दोहराते हैं ना मोहब्बत की वजह से, तो अल्लाह के नबी की बात दोहराएंगे तो खुशी होगी। फिर इसी तरह अजान मगरिब के बाद की दुआ की हकीकत क्या है ये भी सुन लीजिए। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तालीम दी कि मगरिब की अजान के वक्त ये दुआ पढ़ा करूँ, अल्लाहुम्मा इन्ना हाजा इकबालु लैलिका व इदबारु नहारिका व अस्वातु दुआतिका फ़ग़फ़िरली। बड़े प्यारे अल्फ़ाज़ हैं हालांकि, कि अल्लाह ये रात के आने का वक्त है और दिन के जाने का वक्त है और दुआओं की आवाज़ों को सुनने का वक्त है, बस मुझे बख्श दे। लेकिन ये दुआ ज़ईफ़ है। इमाम नववी, इमाम तिरमिज़ी और शेख अल्बानी ने इसको ज़ईफ़ करार दिया। ज़ईफ़ से मुराद है कि नॉन ऑथेंटिक, कमज़ोर सनद है ना। तो अबू दाऊद की रिवायत है 85 और तिरमिज़ी में 3589। आप देखिए कि इल्म हदीस भी सीखिए, आज के दौर में ये हमें आना चाहिए, क्योंकि आज लोग ये कहते लो जी ये क्या हुआ ज़ईफ़, ये गरीब, या क्या हदीसें भी गरीब होती हैं, आपको इल्म नहीं है मुझे नहीं। देखिए कोई आपकी तरफ कोई बात लगा दे, आपने कही नहीं, आपने जो कहा उसमें दो लफ्ज़ बढ़ा दे, आपने जो कहा उसमें से सही एक जुमला निकाल दे, अच्छा लगेगा। यही है सब कुछ, हदीस ज़ईफ़ और गरीब और सब कुछ, अल्लाह के नबी के बारे में बात करते हो, नहीं करने का हुक्म। जो अनजाने में करते हैं उनका मामला अल्लाह पे, जो जान के पता भी है हदीस सही नहीं फिर कोट करते हैं तो ये मामला बड़ा सख्त है। तो ये तो थी चंद बुनियादी चीज़ें। अब अजान और इकामत के कुछ जनरल मसाइल ले लेते हैं। हर नमाज के वक्त अजान देना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज का वक्त आए तो तुम में से कोई एक अजान कहे, यानी मस्जिद में हर नमाज से पहले अजान देनी चाहिए। और बुखारी की रिवायत है 628 और मुस्लिम 674। बास लोग तो इस पे कियास करते हुए अकेले में भी कभी अगर मजबूरी में घर में पढ़नी पड़ जाए, मस्जिद नहीं जा सके, तो वो पहले अजान देते हैं। फिर दूसरी बात है, हजरत बिलाल से मजकूर है कि वो अजान कहते तो कानों में उंगलियां डालते थे। ये आप तरीका सिखाएंगे और कहीं विजुअलाइज कर भी लीजिए, तो पूरा एक तरीका होता है खड़े होने का, फिर दाई तरफ देखने का, बाई तरफ, और ये बुखारी के अल्फाज हैं 634। फिर हय्या अलैस सलाह कहते वक्त मुंह दाई तरफ यानी राइट साइड फेरें, और हय्या अलल फलाह कहते वक्त बाई तरफ। ज़ाहिर हम खवातीन तो अजान नहीं दे सकती, ना बच्चियाँ दे सकती हैं, तो मर्दों को और लड़कों को सिखाइए। फिर हज़रत उस्मान बिन अबू अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुतालबे पर मुझे अपनी कौम का इमाम मुकर्रर कर दिया और फरमाया वत्तखिस मुअज़्ज़िनन ला याखुज़ु अला आज़ानिही अजरा। मुअज़्ज़िन ऐसा मुकर्रर करना जो अपनी अजान पर मजदूरी ना ले। जी ये रिवायत अबू दाऊद की है 531 और तिरमिजी में भी है 199 से 201। आप देखिए कि अगर किसी मस्जिद में किसी को टेक केयर में रखा है नमाज पढ़ाने में, लेकिन वो ये नियत ना रखे कि मैंने अजान देने के पैसे लेने हैं। कुछ कहते हैं ले जी ये भी तो 5 वक्त की जिम्मेदारी है, फिर हम जाएं कहाँ, कमाएं क्या, वो एक अलग इशू है। लेकिन अजान देने के पैसे ना कोई दे सकता है और ना ले सकता है। वो एक ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने और उसके नाते से अगर कोई कहता है तो उसके बारे में उनका इशू है, लेकिन पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप देखिए ना, नमाज अपनी भी तो पढ़नी है ना, तो क्या पढ़ाने के पैसे लेंगे आप? कोई भी अगर ऐसा है, अगर किसी के शौहर मस्जिद में इमाम है या उनको पे मिलती है, तो वो और चीज़ों का सोच लिया करें, पढ़ने पढ़ाने का नहीं। वो और स्किल्स हैं या उनकी ज़रूरियात है, या ज़ाहिर है कि उनका हदिया इस तरह के चले अपने बच्चों को, फिर वो ठीक तरह से पाल लें। लेकिन ये नहीं कि वो एक अजान ना दें तो उनके पैसे काट लें, और सो ऑन, इसी तरह की बातें। मौजिन वो मुकर्रर करना चाहिए जो बुलंद आवाज वाला हो। अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, बिलाल को अजान सिखाओ क्योंकि वो तुमसे बुलंद आवाज वाला है। जी, यानी जिसकी आवाज़ ऊंची हो, जो अच्छी तरह से बोल सके। और ये जो रिवायत है कि बुलंद आवाज़ वाले को दी जाए, तो ये रिवायत अबू दाऊद में 499 पे है और सही रिवायत है। फिर इसी तरह से एक साहबिया फरमाती हैं कि मस्जिद के करीब तमाम घरों से मेरा मकान ऊंचा था और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु इस मकान पर चढ़कर फजर की अजान देते थे। सुभान अल्लाह, क्या उस घर की शान है। अबू दाऊद की रिवायत है 519, और इसी तरह से और भी रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो क्या पता चले कि ऊंची जगह देंगे तो आवाज़ ज़्यादा आएगी ना, देख भी लेंगे लोग। आज तो माइक है, लाउड स्पीकर है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसी तरह से अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया, जिस तरह मुअज्जिन कहता है तुम भी इसी तरह जवाब दो, फिर जब तुम जवाब से फारिग हो जाओ तो दुआ मांगो, तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। जी, तो अजान के फौरन बाद दुआ मांगनी चाहिए। और ये रिवायत है अबू दाऊद की 524। और इस तरीके से ऐसे वक्तों में अगर दुआएं की जाएं तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। फिर इसी तरह अजान और तकबीर के दरमियान अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं फरमाता। ये रिवायत मुस्तद अहमद में 225 जिल्द नंबर 3 में है, और इब्ने खुज़ैमा में रिवायत नंबर 426 और 427 में। तो ऐसे वक्तों को दुआ का वक्त बनाइए, बातें नहीं, इधर उधर नहीं। और जो भाग के पहुँचते जाके आखिरी रकत में, वो तो फिर इन सारी नेकियों से महरूम रह जाते हैं। बस इलाकों में बीमारियों और वबा के मौके पर लोग घर घर अजाने देते हैं, ये सुन्नत से साबित नहीं, क्योंकि इस सिलसिले में पेश की जाने वाली तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं। देखिए, अगर ऐसा होता तो फिर आज कोरोना वायरस के नाम पर तो वाकई ये कुछ हुआ होता। तो ऐसी चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। अस्सलातु खैरु मिनन नौम के अल्फाज सिवाय अजान फजर के किसी और अजान में ना कहे जाएं। यानी अब कोई क्यास कर ले कि अच्छा, अब तो लोग तो जोहर के बाद भी सो जाते हैं, तो फिर जोहर के बाद भी कह ले, नहीं कर सकते। जहाँ शरीयत ने कहा वहाँ करेंगे, जहाँ रोका वहाँ रुक जाएंगे। इकामत अजान के फौरन बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और तकबीर के दरमियान नफिल नमाज का वक्फा होता है। यानी इतना वक्त दीजिए कि कुछ लोग नफिल पढ़ लें, मुराद है कुछ लोग वुजू कर रहे हैं तो वो फारिग होके आ जाएं। और ये रिवायत बुखारी की 624 है। इसी तरह सुबह सादिक से कुछ देर पहले वाली अजान जायज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें बिलाल की अजान सहरी खाने से ना रोके, क्योंकि वह रात को अजान देता है ताकि तहज्जुद पढ़ने वाले अपनी नमाज से जल्द फारिग हो जाएं और कुछ खा पी लें और सोने वाले को बेदार कर दें। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बुखारी की रिवायत है 621 और मुस्लिम की रिवायत है 1093। बात देखिए, एक एक बात दीन का हिस्सा है। हमारे पास कहाँ है इतना वक्त कि हम ये बातें लें? आज उम्मत किधर खो गई, किन चीज़ों में चली गई? इतनी प्यारी चीज़ें हमारे सीखने और पढ़ने के अभी मौजूद है, लेकिन हम अभी वक्त ही नहीं पाते। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आपने फरमाया, जब इकामत हो जाए तो फ़र्ज़ नमाज के अलावा और कोई नमाज नहीं होती। ये बहुत अहम इशू है, पहले तो इसका रेफरेंस नोट कीजिएगा, सही मुस्लिम 710। अब ये क्या है कि मस्जिद में इमाम साहब ने इकामत कही, अब आप दूसरी को नमाज शुरू करें? नहीं, अगर इवन नफिल पढ़ रहे हैं ना, इकामत के दौरान फिनिश कर लीजिए, वरना सलाम फिर दीजिए, ये मुराद है। आप बस ख़वातीन आती हैं मस्जिद में, पता नहीं मस्जिद में जमात हो रही होती है, वो जमात से नहीं मिलती, अपनी नमाज़ शुरू कर देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदाने अरफात में दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी। आपने अजान एक मरतबा दिलवाई और हर नमाज की इकामत अलग अलग कहलवाई। यानी जब दो नमाज़ें इकट्ठी हों तो अजान एक होगी, लेकिन इकामत दोनों नमाज़ों से पहले अलग अलग होगी। और अमूमन जब बाहर घूमने फिरने जाएं तो सफ़र में दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ें तो इसी तरीके से पढ़ी जाएंगी। ये मुस्लिम की रिवायत है 1:1:8। फिर इसी तरह से आपने फरमाया, जब इकामत कही जाए तो सफ़ में शामिल होने के लिए मत भागो, बल्कि वक्कार के साथ चलते हुए आओ। जो नमाज़ तुम इमाम के साथ पालो वो पढ़ लो, और जो रह जाए इसे बाद में पूरा कर लो। पास लोग पहले लेट आते हैं, फिर बाद में भाग भाग के जमा होते हैं, उस दिन दूसरे नमाजियों का खुशू भी जाता है, गड़बड़ भी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये रिवायत सही बुखारी की 636 और मुस्लिम 602 है। भागम दौड़ इस तरह की, गिरते पड़ते उठते, इस्लाम को पसंद नहीं है। फिर इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बिलाल रात के वक्त अजान देता है, बस तुम खाओ और पियो। बिलाल की अजान सुनकर सहरी खाना ना छोड़ो। जी, क्या पता चला कि दो अजानें होती हैं, पहली पे खाते रहे। यानी उस दौर में ये वो अजान थी जिसको तहज्जुद की अजान हमारे कल्चर में अमूमन लोग कहते हैं। ये बुखारी की रिवायत है 622 623 और मुस्लिम में 1092 है। तो मुराद यह है कि जो आखिरी अजान है उस वक़्त तक खा सकते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो की हदीस में इस पहली अजान की हिकमत यह है कि हज़रत बिलाल की अजान इसलिए होती थी ताकि नमाज तहज्जुद अदा करने वाला आराम के लिए या सहरी खाने के लिए वापस चला जाए, और जो सोया हुआ हो वो नमाज फजर या सहरी खाने के लिए बेदार हो जाए। जी, ये बुखारी की रिवायत 621 और मुस्लिम 1093। तो क्या होता चला, अलर्ट कॉल है। और ये अच्छी बात है कि किसी की अगर आंख नहीं खुली तो इस अजान से खुल जाए। इस अजान और नमाज फजर की अजान में इतना वक्फा नहीं होता था जितना आजकल घंटा भर या आधा घंटा वक्फा किया जाता है। हजरत आयशा फरमाती हैं, दोनों अजान देने वालों के दरमियान सिर्फ इस कदर वक्फा होता था कि एक अजान देकर उतरता और दूसरा अजान देने के लिए चढ़ जाता, यानी मिंबर पे। ये मुस्लिम के अल्फाज है 1092। बरादा के थोड़ा सा वक्त तो बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं होना चाहिए जो कि अमूमन दिया जाता है। फिर इसी तरह एक शख्स अजान सुनकर मस्जिद से बाहर निकल गया तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेशक इस शख्स ने सैयदना अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, तकब्बुर भी है। और बैठे बैठे अजान ही नहीं, नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, मैं कहीं और पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं कर सकते। बस वह किसी और काम से लोग गए होते हैं मस्जिद तो फ़र्ज़ हो जाता है नमाज पढ़ना, जबकि वहाँ अजान हो जाए। सही मुस्लिम की रिवायत है ये 655, वरना लोग सोचें कि शायद गैर मुस्लिम था। फिर इसी तरह शरई उज़र या नमाज की तैयारी के सिलसिले में मस्जिद से बाहर जाना पड़े तो फिर जाना जायज़ है। यानी कोई रीज़न हो कि किसी उससे भी बड़ी मस्जिद में पढ़ रहा है या कुछ और, ठीक है, या तैयारी के लिए मतलब वजू करने गया है, वॉशरूम इधर नहीं है, बाहर है, कोई और काम करने गया लेकिन वापस आएगा, तो फिर जा सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो नमाज का इरादा करके आता है वो नमाज ही में होता है, यानी इरादे से ही नमाज शुरू हो जाती है। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं 602, यानी कि फिर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। फिर इसी तरह से अबू हुरैरा से रिवायत है, एक दफ़ा नमाज की इकामत कह दी गई और खड़े होकर सफ़ें दुरुस्त की गईं। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ निकल आए। जब नमाज की जगह पर खड़े हो गए तो आपको याद आया कि आप जुम्बी हैं, तो आपने लोगों से कहा अपनी जगह खड़े रहो। फिर आपने घर जाकर गुसल फरमाया, और जब आप वापस तशरीफ लाए तो आपके सर से पानी टपक रहा था। फिर आपने तकबीर कहकर नमाज पढ़ाई। सही बुखारी की रिवायत 275। आपके जहन में सवाल हो सकता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ताकि उम्मत के लिए एक मिसाल कायम हो जाए। हर काम करके दिखाया ताकि कभी किसी के साथ ऐसा कोई हादसा हो जाए या वो भूल जाए और याद आए तो फिर नमाज से पहले ये काम करे। हाँ, भूल चूक इंसानी कमजोरी है, आप बशर्त इसलिए भी भूल गए। और यहाँ से ये पता चला कि भूलना शाने रिसालत के खिलाफ नहीं है। तो अल्लाह के नबी इंसान थे, और इंसान का तो मादा ही निस्यान से है और भूल से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कदरे तफसील के साथ हमने अजान, इकामत, उसके मसाइल, उसकी दुआएं सुनी और उसकी फजीलत में रिवायतें भी सुनी। और हमने क्या सीखा इस सारे सीखने से? कि अजान को पूरी तवज्जो और खामोशी से सुनना चाहिए, अजान का जवाब उन्हीं अल्फाज में देना चाहिए जो अल्लाह के नबी ने सिखाए, फिर अजान के बाद मसनून दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए और अजान के बाद दुरूद पढ़कर अल्लाह की रहमत समेटनी इंशाल्लाह, और दूसरों की बेजा तकलीद और मरवजा रिवायात से बचना, यानी जो लोगों ने अमूमन एक दूसरे के सुनी सुनाई बातों को कर लिया। फिर हमने ये भी सीखा कि खुद साख्ता अल्फाज नहीं बढ़ाने कुरान की दुआओं में या हदीस की दुआओं में, और गुनाह बख्श दिए जाते हैं मौजिन के जब वो अजान देता है। जहाँ तक अजान की आवाज़ जाती है वहाँ तक जो इंसान और जिन्नात और दूसरी चीज़ें सुनती हैं उन तक उसकी गवाही कायम हो जाएगी। और ये भी पता चल गया कि मौजन की अजान के साथ जवाब देना और उसके बाद फिर दुआ मांगना चाहिए। और इसी तरह हमने ये सीखा कि अजान और तकबीर के बीच में दुआ रद्द नहीं होती, और बीमारियों और वबाओं में घर घर अजानें देना सुन्नत से साबित नहीं। हमारे यहाँ तो कभी बारिशें ज़्यादा हो जाएं, सैलाब आ जाएं, तो भी लोग इस तरह के काम करते हैं। और इसी तरह फिर हमने सीखा कि जब इकामत खड़ी हो जाए तो फ़र्ज़ नमाज के अलावा और कुछ नहीं पढ़ सकते, और अगर एक जगह इकट्ठी नमाजें पढ़नी पड़ें तो उसके बीच में इकामत कही जाएगी लेकिन अजान एक ही दी जाएगी। और अजान सुनकर मस्जिद से नहीं किसी को निकलना चाहिए, क्योंकि मस्जिद में नमाज के लिए नियत करके जब बंदा आ जाता है तो वो नमाज में होता है। और हमने ये भी सीखा कि अगर कोई भूल जाए और इवन सफ में खड़ा हो गया और याद आए कि गुसल वाजिब था, तो वो जाए और गुसल करके आए।